मैं चाहूंगी कि हम एक आध वीडियो देखें, यानी आपको एक छोटा सा मंजर दिखाते हैं कि किस तरह से जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे लोगों को तवाफ करते हुए देखते हैं, लाखों का मजमा होता है वहां। और आप कभी लोगों की भीड़ देखें, लोगों का घूमना देखें, आप देखिए कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। चंद चीजों को हम देखेंगे कि जब हज करें या उमरा करें, सबसे पहली चीज जो हमारे जहनों में आती है वो एहराम है, लिखिए इसको। और आप इन चीता चीता चीजों से कुछ सबक लेंगे कि जब हम यहां से निकलते हैं तो सबसे पहली कैफियत एहराम की कैफियत होती है। ऑफकोर्स उससे पहले के मराहल, जिसके अंदर तैयारी और वो सब कुछ तो एक जनरल चीजें हैं ही हैं, उसमें भी शौक और जज्बा तो होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम एहराम पे गौर व फिक्र करते हैं। अमूमन आप देखिए कि जो साथी जा चुके हैं उनको तो एहराम की सारी डिटेल्स पता होती हैं, जो नहीं जा चुके उनके लिए ये है कि एहराम अनसिले कपड़ों का एक जोड़ा होता है। ये एहराम नहीं है, एहराम असल में कैफियत का नाम है। कैफियत किस चीज की कि कुछ चीजें जो आम जिंदगी में हलाल होती हैं, एहराम पहनते ही हराम हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि कुछ काम आमतौर पर हलाल है लेकिन रोजे की हालत में हराम हो जाते हैं, मसलन खाना पीना, शौहर और बीवी का ताल्लुक वगैरह। एहराम की कपड़े को अगर आप देखें तो उस पर कोई टांका नहीं लगा होता, अनस्ट्रेच्ड चादरें। अमूमन मर्द जो हैं वो दो सफेद चादरें पहनते हैं, एक उनके आजार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और दूसरी ऊपर उनके कंधे को छुपाती है। औरतों का एहराम बजाते खुद कोई कपड़े का नाम नहीं है, लेकिन एहराम में चूंकि कोशिश करनी चाहिए कि सर का कोई बाल ना टूटे, खासतौर पर जान के तो तोड़ना भी नहीं, तो उसके लिए लोग बचने के लिए अगर सर पे एक ऐसा स्काफ पहन लेते हैं कि जिसमें बार बार बाल ना खुले, तो वो एक कैफियत है। लेकिन एज इट इज औरतों का एहराम कुछ नहीं होता। लेकिन हम अगर फी जमाना उस सफेद एहराम की बात करें तो जरा देखिए कि सफरे हज किस तरह सफरे मौत को याद दिलाता है। जब लोग घर से निकलते हैं हज के लिए, अमूमन लोग उनको सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक जाते हैं। इसी तरह जब मैयत का सफर आखिर शुरू होता है तो लोग उनको साथ लेकर चलते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जितने भी खूबसूरत कपड़े घर में हों, हाजी गुसल करते हैं, खुशबू लगाते हैं और एहराम पहन लेते हैं। इसी तरह मैयत, डिजाइनर क्लॉथ, बुटीक क्लॉथ और बीसीओ जोड़ों को छोड़कर पहले मैयत को गुसल दिया जाता है, फिर काफूर की खुशबू लगाई जाती है और उसके बाद उसको सफेद कपड़ों में लपेट दिया जाता है। जिस तरह हाजी को लोग छोड़ने जाते हैं जहाज तक या एयरपोर्ट तक, इसी तरह मैयत को छोड़ने के लिए भी कब्रिस्तान तक लोग जाते हैं। जाने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन एक मुकाम पर पहुंचने के बाद सब उसको छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि जब घर से वो निकला और उसने अपने कपड़ों को उतार के दूसरे कपड़े पहन लिए, लोगों ने उनको छोड़ना चाहा, बाद वह लोग हाजियों को भी मोहब्बत में कंधों पर उठा लेते हैं। इसी तरह आप देखिए कि मैयत को भी चंद लोगों का कंधा मिलता है। जब कंधा मिलता है तो उस वक्त बाद दफा लोग फूल डाल देते हैं, मरने वाले पे भी बाद दफा लोगों को देखा कि फूल डाल देते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि एयरपोर्ट पे एक ऐसी जगह आती है कि उसके बाद फिर कोई प्यारा साथ नहीं जा सकता। और अमूमन देखिए कि हाजियों के पास बहुत थोड़ा सामान होता है, चंद जोड़े। यानी मैं आपको बता सकती हूँ अपनी आदत, शायद सीखने की नहीं, ऐसे बताऊंगी कि जब भी कभी हज के लिए या उमरे के लिए अल्लाह ताला ले जाता है तो उस बहुत पहने हुए कपड़े जो आरामदेह भी हों और जिसके पहनने के बाद इंसान को थोड़ा सा एहसास भी ना हो कि मेरे कपड़े ना खराब हों, और बवक्ते ज़रूरत वो वहाँ देने पड़े तो दिल पे बोझ भी ना पड़े। मैंने दो सूट रखे थे गर्मियों के लॉन के, ये सोच के कि मक्का में गर्मी होगी, और दो शिफून टाइप के रखे थे जो कि ये था कि अगर सर्दी हो गई तो क्या होगा। और दो सूट ऐसे थे जिसको फॉर्मल कह सकते हैं, बहुत फॉर्मल नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा था कि वहां कुछ ऐसी गैदरिंग्स होंगी कि अगर जरूरत पड़ी तो पहन लेंगे। ये टोटल कपड़े थे हमारे पास। अबाए भी मैंने वही, एक मोटा अबाया, एक पतला मीडियम सा, और वो वही रखे कि जिसमें बिल्कुल इजी गोइंग। यही स्कार्फ जो इस वक्त भी मेरे सर पे, अल्हम्दुलिल्लाह यही स्कार्फ मेरा ऐसा पहुंचा। कुछ लोग जो हैं वो एहराम के हालत में औरतों के दुपट्टे और उस पर बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो उस वक्त ज्यादा फायदा होता है। आप देखिए कि अगर आप जो साथी यहाँ देख रहे हैं, एक तो मेरे इसके साथ भी एहराम ये लग गया, निकाब लगा हुआ है, हालांकि मैं नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करती, ये बस इनडोर के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको भी यूं कर लूं तो ये भी एक पूरा निकाब है, ये यहाँ बटन लगा हुआ है, ये आप देखिए, ये लेकिन अगर आप रोज आते जाते मुझे देखते होंगे तो मैं ये नहीं यूज करती। इसके ऊपर ये मेरी एक अलग निकाब है, ठीक है। इस निकाब को जब नॉर्मली अगर आप देखें तो ये निकाब सिली हुई है, आगे इसके ये रास्ता से होता है ना खिड़की सी, इसको हम यूं बांधते हैं और जैसे रोज पहनते हैं, इसको कहते हैं निकाब है, ठीक है। अब अहराम के अंदर जो औरतों के लिए एक प्रॉब्लम है और जो बहुत सीरियस मसला बन जाता है वो क्या है कि अहराम के अंदर निकाब नहीं पहन सकते, यानी जो सिली हुई निकाब है ये मना है, और ग्लव्स नहीं पहन सकते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उन्होंने बताया कि जब हम दूर कहीं काफिलों में होते तो फिर तो मुंह खुले रखते थे, लेकिन जब हमारे पास कोई करीब से काफिला गुजरता तो हम अपने चेहरों को चादरों से छुपाते। अब इसका हल क्या करें? अब आप देखिए ना, मैं अपने ऊपर ही लूंगी, हो सकता है कि आप में से जो सिस्टर्स अभी निकाब नहीं करती उनका इशू ना हो, लेकिन अल्लाह करे कि जब आप उमरे या हज पे जाएं उससे पहले आप निकाब कर चुके हैं, तो कितना मुश्किल है। आप यहाँ निकाब कर रहे हैं और आप बस में बैठते ही, जहाज में बैठते ही, मुझे याद है कि हम चूंकि इस तरह से गए थे कि यहाँ से हमारी जो फ्लाइट थी वो शारजा की थी, और दुबई और शारजा के रास्ते यानी जहाँ हमने मीकात में दाखिल होना था वो शारजा से जद्दा की फ्लाइट थी। तो अब आप सोचिए कि जहाज कितना छोटा होता है, फुल पैक जहाज, और वहाँ रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहाँ वो उससे पहले ही बता देते हैं कि हम गुजरेंगे तो आप एहराम की नियत कर लें। अब आप सोचिए कि जहाज में बैठने तक तो मैंने फुल ये निकाब किया हुआ है, ग्लव भी पहने हुए हैं, सब किया हुआ है, लेकिन जब वो कह दी कि अब एहराम की जगह आ गई तो मैं मुंह खोल दूं, तो मेरे इधर मेरे उधर वाले वो क्या सोचेंगे, बहुत वेरी बिग हार्ड। तो उसका इलाज क्या है? ये बहुत कम लोगों को पता है जो इतना आसान तरीका है। यही निकाब देखिए, इसको अगर मैं यूं पहनूंगी ना, लाइक ये देखिए कि अगर ये इसको, अब ऑनलाइन वाले परेशान हो रहे होंगे लेकिन उम्मीद है कि एक्शन से समझ आएगी। ये देखिए, इसको मैं यहाँ जब पीछे बांधती हूँ ना, तो उसके बाद ये इसकी परत है, ये एक निकल गई दूसरी चली गई, और यूं ये निकाब है। आम हालात में यूं करते हैं, एहराम में मैंने इसको यूं नहीं किया, मैंने इसको उलट कर दिया। आपको याद होगा पहले दौर में औरतें जो बुर्का पहनती थी उसमें सर से ऊपर से चादर की तरह फेंकती थी। अब ये देखिए कि ये पट्टी है ना इसकी, ये पहले तो मैं इधर थी ना, मैंने क्या किया उस वक्त, इसी को यूं किया। अब आप देखिएगा क्या होता है, इसमें से वो खिड़की जो है वो पीछे चली गई, यानी ये जो निकाब की कैफियत थी इसकी, सॉरी ये पीछे गया। अब इसके कितने ही पुरुख है, ये देखिए, अब ये जो चीज़ है ना ये निकाब नहीं रही, ये ऊपर से ओढ़नी डालने वाली कैफियत है, और इसको मैंने क्या किया, यूं करके इसको छोटा कर लिया यूं, यानी इसमें आप इसको ओट कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सिला हुआ निकाब नहीं है मेरे मुंह पे, ये जब नहीं जरूरत तो उसी को ढीला रखें, लेकिन जाहिर है कि जब सामने ना, इतना इजी ये लगा इस तरह से, ये इसकी इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे घूंघट निकाल लेते हैं, लेकिन वो होते हैं ना चलने में सफर में सामान है उठाने में वो लटकती रहती है ना, अब ये इस वक्त अगर आप देखें तो ये वो चीज बन गई है जो पहले दौर में औरतें बुरके के ऊपर छोटा बुरका पहनती थी, यानी इसमें सिलावा नहीं है, बस ये इसका एक फेंक लूं या दो फेंक लूं, और जहां ना भी जरूरत पड़े उसको ढीला रख ले, और इसमें से नजर भी आता है, सी थ्रू है ना। अच्छा, फिर इसमें जब नजर भी आता है ना, तो बाज दफा ये भी किया जा सकता है कि लाइक दिस वे, इसको यूं करके ना, तो आप इसको नीचे से थोड़ा सा हाथ से कर ले, यानी बहुत मुझे इजी लगा। जो इस वक्त मकसद बताने का क्या है कि अगर एक चीज जो आपको इजीली मिल जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहरहाल यह कि एहराम पहनने के साथ ही दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत आती है। जो चीज मैंने महसूस की वो ये थी कि आज तो मैं अपने हाथों से पहन रही हूं ना, किसी वक्त भी मुझे पहनाया जाएगा। फिर आप देखिए कि उस कैफियत के अंदर आते ही इंसान एकदम ना चाहते हुए भी अपनी मौत को सोच लेता है। किस तरह से हम उस सफर पे जाते हैं और पीछे हमारा घर है, कपड़े हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। जरूर एक दफा तो वक्त ऐसा आता ही है हज उमरे में कि जब आपका रब्ता दूसरों से कट जाता है। आपके पास आजकल सेलफोन्स भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अल्लाह के हुक्म से कभी तन्हा रह जाते हैं, और इसके लिए बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए। हर वक्त जैसे मेरे हाथ में क्या होता था, जैसे ये फोन नजर है, फोन हमारी जरूरत है, एक पाउच है बिल्कुल सिंपल सी, वो एक जैसे लेदर की पाउच सी है, पूरा वक्त मेरे पास वो पाउच थी, ये फोन उस पाउच में, पीछे उसके चंद थोड़े से पैसे, और जहां भी अगर रहते हैं अगर उसकी चाबी, आजकल तो कार्ड्स ही होते हैं, यानी टोटल वो पाउच थी, और उसको इंसान अपने पास जिस्म में कहीं भी रख सकता है, हैंड फ्री, एक खाली हाथ का थैला, इतनी आदत पड़ गई कि हाथ में थैला अच्छा लगता है, उसमें एक बिल्कुल सॉफ्ट सी जूती जिसको आप कह लें कि जहां दिल चाहे पहन लो, दिल चाहे तो उतार भी दो। इतनी आसान जिंदगी, इतना आसान, और यकीन करें कि वही दो जोड़े जो लॉन के थे वही चले। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम लोग जो सर्द मुल्कों से जाते हैं तो हमें जरा अच्छा लगता है, थोड़ी सी अगर सर्दी लग भी जाए सुकून के साथ वही धो के वही इस्तेमाल करके अल्लाह के हुक्म से सफर हो गया। तो जब भी जहां से जाए ना, तो बिल्कुल ये सोच के जाए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। फिर आप देखिए कि बाज दफा इंसान के पास कोई अमानतें होती हैं, कभी किसी को कुछ कहना लेना देना, तो अमूमन हज और उम्रे के मौके पर लोग उससे पहले फारिग हो जाते हैं। ये मैंने पिछले कई सालों से लोगों की आदत आजमाई है, जिसने आपका कई कई साल से देना होता है वो कभी जिक्र भी नहीं करता, वो खुद फोन करके कहता है मैंने जाना है, मुझसे ले ले, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एक किस्म की जवाबदेही का एहसास होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब हम एहराम के अंदर वो सारी पाबंदियां सह लेते हैं जो अल्लाह ताला ने कही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि एहराम एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें औरतों का ज्यादा इम्तिहान है। आमतौर पर औरतों को पहनने ओढ़ने का मतलब पर्दे का है, एहराम में मर्दों का जिस्म खुला होता है, इतना क्लोज एक्शन। एहराम में आप देखिए कि जब आप तवाफ करते हैं तो आपको पूरा बचना भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन किसी पे आपकी नजर भी पड़ सकती है किसी पे, लेकिन कोई एक फितना नहीं उठता। आप सोचिए लाखों लोग एक जगह पे, मर्द और औरतों। और मैं पूरा इस उदाल का जो उम्रा था ना, मैंने अपने आप को किस नजर से देखा, नाम नहीं लेती, लेकिन मैं इस वजह से सोच रही थी कि कोई न्यू मुस्लिम सिस्टर अगर हमारे इस जगह पे पहुंचे अल्लाह के घर में बैतुल्ला में, तो वो हमें देखकर क्या फील करेंगी, उनको कैसा लगे और क्या रौनक उनके दिल पे अल्लाह ताला की डलेगी। और ज़ाहिर है कि दिल इंसान का खुलता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो दूसरी चीज़ है हज के साथ ही ताल्लुक के साथ, वो तवाफ है। ये देखिए इस वक्त ये मुताफ है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, सबसे बेहतरीन जगह आज के दौर में अगर आज इन दिनों में जाएं, कहते हैं कि ये भी मे भी 4-5 साल तक रहेगा ये मुताफ, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये इन्होंने वक्ती तौर पे रखा है। इसके ऊपर जब आप तवाफ करते हैं और नीचे देखते हैं ना, बिलीव मी के अनएक्सप्लेनेबल किस्म की रौनक पड़ती है दिल पे। और लोग बहुत थोड़े होते हैं, ये अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो एक खास जगह बनी हुई है सफा मरवा के डोर के पास ही, जहां से अंदर जाते हैं। रश भी कम होता है अमूमन, हाँ दिन में अगर करेंगे तो धूप होती है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं थी तो असर से मगरिब या मगरिब से इशा में बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। यहां से जब आप नीचे देखते हैं, सब एक ही रुख पे फोकस्ड अल्लाह की तरफ, सबकी जिंदगी ऐसे लगता है कि घूम रही है, घूम रहे हैं, हर बंदे को सिर्फ अल्लाह की जात चाहिए। ये तवाफ हमें क्या सिखाता है? कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 7 चक्कर इंसान की जिंदगी के 7 चक्कर है। तुम्हारा हर काम अल्लाह के लिए हो, ये खलूस सिखाता है, ये इखलास सिखाता है, ये इंसान को फोकस्ड होना सिखाता है। ये तवाफ हमें सिखाता है कि दुनिया सारी कुछ भी कह ले, तुमने अपने रब के आगे दीवाने बनना। और आप देखिए क्या ये अकल में आती है बात, ये दीवानगी है, वारफ्तगी है। अकल से पूछें कि एक बड़ा लिपटे हुए काले घर को आप चक्कर लगा रहे हैं, अकल तो नहीं मानती, अकल तो कहेगी ये क्या होशियार है, बेवकूफी है, चल चल के पांव सूज जाते हैं। लेकिन इंसान महसूस करता है कि भाई अल्लाह ताला ने जब ये घर बनाया है तो मैं इस घर के चक्कर लगा रही हूं, क्यों? ताकि मेरी जिंदगी का किबला दुरुस्त हो। फिर आप देखिए सब एक रुख पे, घर तो एक है, ये भी तो हो सकता है ना, आधे लोग इधर से शुरू हो जाए आधे इधर से, आधे लोग अगर मुकामे इब्राहिम के पास से जो डोर है उधर दरवाजे से शुरू करते हैं तो आधे रुकने यमानी से उल्टा शुरू कर दे, इंच ही बराबर भी लोग उधर चेंज नहीं करते, लेकिन उस कमरे से उस घर से बाहर आते ही हमारी जिंदगी के रुख क्यों बदलते हैं? वहां तो कोई नहीं कहता लोग क्या कहेंगे, वहां तो कोई ये नहीं कहता कि लोग किस तरह, खानदान मेरा क्या कहता है, लेकिन असल में अल्लाह ताला यही तो सिखाता है कि ये किबला तुम्हारी जिंदगी का किबला दुरुस्त कर दे। जब कभी आपको मौका मिले तवाफ करने का तो आप तवाफ के अंदर पूरी फोकस करें। मैं क्या करती थी अमूमन, जैसे 7 चक्कर होते हैं तवाफ के, ऐसे ही सिर्फ एक अपनी याद दहानी के लिए कोई कुछ रह ना जाए, हालांकि यकीन करें दुआ सिर्फ एक ही जुबान पर रहती है कि अल्लाहुम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह अपने मेरे गुनाहों को बस माफ़ कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान है, एक तवाफ में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप का सोच लें, फिर माँ बाप के साथ मेरी आदत है कि मैं अपने भाई बहनों के लिए भी दुआ करती हूँ, तो नीयत उनकी होती है दिल में, लेकिन रब्बिरहमहुमा अच्छा लगता है कि अगर मेरे भाई या बहन को या उनकी औलादों को कोई गम पहुंचेगा तो मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी। इस सोच के साथ बहन भाइयों के लिए तवाफ, फिर एक तवाफ आप अपने स्कूल, अपनी क्लासेस, अपने लिए, अपने इन लॉज के लिए, किसी में आप अपनी आदत को बदलने के लिए, किसी में करेक्टर बिल्डिंग के लिए। यानी मैंने इस साल उम्र में इन्हीं 2 चीज़ों को देखा है। इस दफा में काफी अच्छे कारी जो माशाल्लाह हरम में थे उनसे, कारी हुज़ैफ़ी का आप कितना नाम सुनते हैं, हम जब मस्जिद नबी में गए रात को पहुंचे बिल्कुल उसके कुछ घंटे के बाद, फिर फजर हुई तो फजर में जब हम गए फटाफट सामान रख के, तो बिल्कुल सहन में हमें जगह मिली और कारी हुज़ैफ़ी की तिलावत थी। इतना अच्छा लगा उनकी आवाज़ सुन के लाइव, और उनके बेटे के घर ये सारे मर्द गए भी, हम तो नहीं जा सके लेकिन वो इनवाइटेड थे। तो इस वक्त मस्जिद नबी में इमाम है कारी हुज़ैफ़ी, और कारी हुज़ैफ़ी के बारे में कहते हैं कि इस वक्त भी जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं मुख्तलिफ मदरसों में सऊदी अरब में, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है फाइनल जिसमें से वो चूज़ करते हैं, और उस टेस्ट की जो असेसमेंट है वो कारी हुज़ैफ़ी करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे ऐसे इन लोगों को नवाजा हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए कि तवाफ करने के दौरान बस दफा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, गिन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से प्यार से बिल्कुल मस्त बन जाए दीवाने। उस वक्त कोई के मुझे कोई नहीं जानता, लोग आपके पाँव में पाँव रख के चले जाएं, किसी को आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई धक्का मार के आपको इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। इसके लिए भी अगर आपको जब भी अल्लाह ताला मौका दे, और अल्लाह करे कि आप अपने महरमों के साथ जाएं, बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप अपने महरम के साथ रहें। आप देखिए कि बहुत करीब घुसना नहीं चाहिए, आप 3 तवाफ दिन में करेंगे ना उसकी जगह 1 कर लें। करीब हम इसलिए भी करते हैं ना कि एक तो किसी जगह को हाथ लग जाए, और दूसरा यह कि थोड़ा सा छोटा चक्कर हो आप दूर लगाएं, करीब हाथ नहीं लगेगा। हमने इधर से एक पिक्चर भी है उसकी वीडियो बनाई हमने, हम ऊपर से देख रहे थे, बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। हम असर की नमाज थी गालिबन, और उसके बाद मगरिब का वक्त था, तो हम ऊपर तवाफ कर रहे थे, तो साथ साथ नीचे वो चाती भी मार लेते थे क्या हो रहा है। हमने क्या देखा कि नमाज से तकरीबन आधा घंटा पहले क्या खूबसूरत तरीके से वो क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, मैंने उसको कई जगह पिक्चराइज किया भी कि मैं आपसे भी शेयर करूंगी, इतने लोगों के अंदर लोगों के लिए वो जगह कैसे बनाते हैं। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा लोग बैतुल्ला का जो दरवाजा है उसके पास होते हैं, क्योंकि मुल्तजिम भी उधर है और हजरे अस्वद भी उधर ही है पीछे बैतुल। उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता, हम देख रहे थे बस, सब थे कुछ लोग थे जो जाहिर है कि वॉलंटियर्स और वहां के जो मतलब मुतवे होते हैं, वो सारे ऐसे इकट्ठे खड़े थे, ऐसे सब खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे यूं पीछे फैलने लगे, और उनके हाथ में रस्सी थी, वो जूं आगे फैले ना तो वो रस्सी जूं लेके चलते गए, लोग उस रस्सी से बाहर खींचते गए, वो मुताफ उन्होंने खाली किया जो जहां पे इमाम साहब आते हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद सफाई वाले आए, उन्होंने उस जगह को फिर धोया, फिर उसको वैक्यूम किया, फिर एक शख्स था बड़ी सी जैसे वो पुराने जमाने में सुराखी टाइप चीज नहीं होती जिसके आगे एक नाली सी लगी, वो लाके ना तो उसने सब स्प्रे किया। हम ऊपर तुक्के लगा रहे थे ये कोई खुशबू लगा रहे हैं या ये कोई एंटी वो क्या कहते हैं बैक्टीरियल कुछ भी कर रहे हैं, यानी ऐसे वो प्यार से जगह उनकी धो रहे थे। फिर उसके बाद एक शख्स आया, उसने बहुत बड़ी बड़ा सा खूबसूरत सा मसल्ला बिछाया। एक शख्स आया तो उसके हाथ में ये साउंड सिस्टम था वो रखा एक सजदे की जगह पे, और हम ऊपर खड़े बातें कर रहे थे कि ये किस चीज की इज्जत है। उस वक्त हमें लगे इमाम काबा कोई बादशाह है, वल्लाही मुझे तो वो आयतें याद आ रही थी जहन में कि जो अल्लाह ताला के नजूल की बातें आती है ना कि क्यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हान ताला जमीन जमीन पे आएंगे दुनिया में आएंगे तो उस वक्त क्या फील होगा। इतना प्रोटोकॉल, इतना ऑनर, उन्होंने वो जगह खाली करवा दी, फिर लोग पीछे होते गए, हालांकि भी आधा घंटा था नमाज में। फिर उसके बाद जब अजान का वक्त हुआ तो फिर उस मसल्ले पे आके हम ये देखना चाहते थे कि इमाम काबा आते किधर से हैं। फिर वो रास्ता देखा गया कि जहां से वो आए और उन्होंने आके जब वहां फिर ऊपर एक चौका पे एकदम बस उनको लेकर आते हैं, बल्कि हमारा ख्याल था कि उनके सब बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी चीजें होंगी बाजार कहते हैं लोग, लेकिन हमने ये पूछा जब हमारे इस दफा काफी करीबी लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कोई किसी की यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, बस हम एक यानी इनको बचाते हैं लेकिन यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई इमाम काबा के गार्ड नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई फिक्र नहीं है। इतनी उनको अल्लाह ने इज्जत दी कि वहां खड़े होकर जब उस मसल्ले पे खड़े तो हम भी ऊपर खड़े रो रहे थे कि अल्लाह ये क्या माँ थी। बल्कि आपको मैंने पिछले एक और शेयरिंग में सुनाया कि जब हम कारी सुदेश की बहन से मिले तो फिर हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या चीज थी, किस चीज से हुआ, तो कहती हमारे भाई सुदेश बचपन में कभी अम्मी को तंग करते थे तो अम्मी इनको ये कहती जरूर थी कि अल्लाह तुम्हें काबे का इमाम बनाए, लेकिन उस वक्त हमारे जहन में भी ये चीज नहीं थी कि ये इस तरह हो जाएगा। और बिल्कुल यानी ये अल्लाह का चुना होता है, आपके अंदर कितनी भी खूबी हो किसी को नहीं पता, जब अल्लाह आपको चुनता है ना तो फिर वो चुना होता है। फिर उस वक्त जब वहां अजान हुई और मगरिब का वक्त, और सुबहान अल्लाह ऐसे लग रहा था कि जैसे वक्त थमता है, एक लहजे में वो तवाफ रुकता है जो सारा दिन चलता रहता है। अच्छा क्या हुआ कि जो उसमें एक दो बड़े दिलचस्प मंजर भी हुए, जब वो जगह साफ कर रहे थे ना तो मर्द तो पीछे हुए ना। ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त औरतों को बड़ा लालच आ जाता है कि भाई आगे हम जाएं, तो उन्होंने क्या किया कि जब मर्द हटे ना तो ना चाहते हुए भी एक दफा जो मर्द पीछे हट रहे ना तो उन्होंने औरतों को मौका दे दिया। हम ऊपर से देख रहे थे हजरे अस्वद को चूमने का, तो कुछ औरतें जो वहां खड़ी थी ना उन्होंने ऐसे इशारा किया तो वो औरतें जो थी वो चूमने लग गई। अब क्या हुआ कि वो दे के बाद में उसके बाद वो हिस्सा भी उन्होंने बंद कर दिया। अब आप सोचिए कि लोगों के मुंह में पानी आ रहा होता है कि सारा हिस्सा खाली है और कोई अंदर है नहीं। इतने में क्या हुआ कि पीछे सफ में से एक औरत उठी, ऐसे दीवानों की तरह उठती, भागती, मर्दों की सफ़ें चीरती हुई गई हजरे अस्वद के पास वहां। और अब आप देखिए कि हम सारा मंजर ऊपर से देख रहे हैं कि इसके दिल में क्या दीवानगी है, ये क्या सोच रही है। लेकिन आपको पता है कि पुलिस वाले ने उसको नहीं लगाने दिया। वजह क्या कि अगर पुलिस वाला उसको इजाजत दे देता तो पीछे छह और आ जाने। उसने उसको बिल्कुल खाली था उस वक्त हजरे अस्वद। तो कभी अल्लाह आपको ले जाए ये कुछ ना करें। देखिए अगर आपने हजरे अस्वद को बूसा दे भी दिया लेकिन अगर आपके इन्हीं होंठों से हराम जाता है, गालियां बोलते हैं, गीबतें बोलते हैं, तो क्या हुआ। ये तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हजरे अस्वद जो जन्नत का पत्थर है इसको बोसा दो, ये तो नहीं कहा कि जिसने इसको बोसा दे दिया उसको जन्नत मिल जाएगी। दिया हजरत उमर फारूक क्या कहा करते थे कि ए हजर तू पत्थर है, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमने का हुक्म दिया है, मेरा ईमान है कि तू फायदा नहीं दे सकता, तू नुकसान नहीं देता, नहीं मिलेगा। फिर इसी तरफ देखिए हतीम, हतीम के अंदर लोग हर वक्त रश में। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सारी बातें कहती हूँ कि जब हम वहां गए होते हैं तो हमारा दिल है कुछ करो, कुछ करना है। अब उसमें जी घर जाके बताएंगे बोला क्या कि हतीम में नफिल ही नहीं पड़े। अब एक रश औरतें मर्दों में घुसे हुए हैं। अब आप सोचिए हतीम क्या है, खाना काबा के अंदर का हिस्सा। मानिए आप जरा अपने जहन में लाइए कि खाना काबा के बाहर की तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, अभी भी हम पढ़ेंगे तो किबले की तरफ पढ़ेंगे। हरम में गए तो काबा आगे रख के, आगे था तो हमने पढ़ ली। तो अगर आपने हतीम के अंदर 2 नफिल या 10 नफिल पढ़ भी लिए तो क्या उसका आपके ईमान और आपके अमल और आपके किरदार से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों को एक दफा मौका मिल जाए, मैंने खुद अपने कानों से औरतों की बातें खड़े हुए सुनी कि मिन ते मौका मिल गया फिर मैं तो निकली नहीं अंदरों, ये तो जुल्म की हद है। आखिरी दिन था, मैंने कहा अल्लाह ताला ये क्या हो गया भला, अब अंदर भी नहीं जा रहे। और जो मेरे साथ थे उनमें से मुझे किसने कहा कि मुझे तो आज सुबह मौका मिल गया, तो वो और भी दिल में जलन पैदा हुई। तो जब आखिरी तवाफ करना था मक्का से मदीना जाने से पहले, तो मैं अकेली थी उस वक्त, तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला मुझे तो ले जा तो बेहतर है, मैं कोशिश तो नहीं इतनी कर सकती लेकिन तू ले जा। बिलीव मी पता नहीं कैसे हालात हुए, मैं खुद ही अंदर आ गई। अब जब मैं अंदर आई ना तो वहां जहर है कि आप अंदर हैं और औरतें वहां खड़ी हैं। अब पाँव तो मिल गए लेकिन नफिल कहाँ पड़े, ना रुकने की जगह ना झुकने की जगह। तो वहां एक औरत थी, मैंने थोड़ा सा इंतजार भी किया, तो फिर मैंने कहा अम्मा जी तुम बाहर निकलो। कहती मैं तो किस ले दी बैठी है, तो आपस में बातें कर रही थी, मैं तो अन्ने नफल पड़े। मैं कह अम्मा जी ओही रब बाहर है ओही अंदर है, तुम दूसरे ने मौका दो। तो उसको मेरी बात पता नहीं अच्छी लगी कि बुरी लगी, लेकिन ये कि लोग वहां जाके बैठते हैं, आप कभी भी ऐसा ना करें। 2 नफिल पढ़े, नहीं पढ़ते जाते वहां खड़े रहे थोड़ी देर, अपने अंदर फीलिंग लाएं, स्पिरिचुअलिटी लाएं, कहाँ खड़ी हूँ अल्लाह तूने मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे जन्नत में भी ले जाना, कभी काबा के अंदर भी चली जाऊं, बस निकल आए। इन रिचुअल में सिर्फ वो कौमें पढ़ती हैं जो असल मकसद से दूर होती हैं।